बन कर जीवन बना अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बन कर जीवन बना अच्छा लगा आंसू मेरे मोती बन चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बन कर जीवन
शांति। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बाकी ये ढाई दिन विशेष मधुबन भूमि में हम सब ने अपनी तपस्या की। ये स्थान ही एक विशेष अनुभूति लेकर के जाने का स्थान है। शांतिवन बेहद बाबा का बेहद घर है। वहां बाबा के बच्चे आते भी बेहद में है, बड़ी संख्या में है। हम वहां जाकर के बाबा से मिलन भी मनाते हैं। समय प्रति समय भट्टियां भी होती रहती है, उसका भी चांस लेते हैं। लेकिन हम सबका एक आकर्षण रहता है कि अगर पांडव भवन में हमको दो दिन भी रहने को मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है यहाँ और कोई कारोबार के अर्थ भी किसी को रहने का मौका नहीं होता है। एक समय था जब यहाँ अकाउंट्स या कुछ न कुछ कारोबार भी चलता था। अब तो कारोबार के हिसाब से भी सबका आना जाना यहाँ इस भूमि पर बंद है। तो यहाँ करके पट्टी का चांस मिलना, हमारी मुनि दीदी के पास लंबी लिस्ट होती है, हर कोई आना चाहता है। तो हर साल सबको चांस मिलता है ऐसा भी नहीं होता है। मुझे मालूम है 3 साल से पेंडिंग था, तब हमारे सब जोन को इस बार चांस मिला था। यहाँ भी ऐसे ही होगा जी। तो मतलब लंबी लिस्ट होती है और जितना हो सकती है भट्टी उतनी हो सकती है, संख्या में तो बढ़ोतरी हो नहीं सकती है। फिर भी मैं समझती हूँ आप लोग एक्स्ट्रा लकी हो कि ये दिनों में ये एक्स्ट्रा ग्रुप आप लोगों को मिल गया है। नहीं तो चारों तरफ राखी की यहाँ वो एक माहौल होता है, तो इन दिनों में आप सबको भी मालूम होगा ऑफिशियल लिखत में इन तारीखों में कोई भट्टी नहीं थी। तो ये एक मौका है हम लोगों के लिए, जबकि हम ये पूरा 3 दिन यहाँ अच्छी तरह तपस्या करके हम अपने अंदर फिर से वो शक्ति भर कर जाएं। बाबा ने हरेक को इसीलिए चुना है क्योंकि बाबा को हरेक से अपना कुछ न कुछ कार्य अवश्य कराना है। हमें मालूम नहीं है कि बाबा ने मुझे पर्सनली किस कार्य के लिए चुना है, लेकिन बाबा ने हमारे अंदर कोई विशेषता देखी। बाबा को अपने यज्ञ प्रति किसी न किसी रूप से हमें सहभागी और सहयोगी बनाना होगा। कोई कहेगा बहन जी हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बाबा के यज्ञ में क्या सेवा करके गुप्त रूप में जाते हैं, तन की, समय की, हार्ड वर्क के रूप से क्या क्या सेवाएं करके जाते हैं, जिससे बाबा का घर आज अच्छी तरह सुचारू हर एक जगह चल रहा है। और उसमें भी इस ग्रुप में माताएं विशेष है। माताओं की तो वैसे भी विशेषता होती है, अपने लौकिक घर का कारोबार करते हुए भी बाबा के घर में जब भी आएंगी अपना कुछ न कुछ जमा का खाता, झाड़ू भी लगा के जाएंगी तो आपके लिए तो वो जमा का खाता है ना। मैं कई बार हंसती हूँ, हम बहनों से भी आपका जमा का खाता फास्ट होता है। भाई बहने सब, हम लोग बाबा के यज्ञ से पूरी परवरिश ले रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी परवरिश जो भी ले रही हैं हम लोग यज्ञ से ले रहे हैं, तो जितना परवरिश हम ले रहे हैं उतना किया सेवा, तब तक तो जमा का खाता कुछ नहीं है। उसके बाद जो किया वो जमा के खाते में जाएगा। जबकि आप लोग तो बाबा के घर में आए, जरा सा झाड़ू लगाया तो भी जमा है, जरा सा डस्टिंग करके गए तो भी जमा है, और यज्ञ सेवा में हमारे भाई छोटी मोटी हार्ड वर्क की सेवा करके गए तो भी सेवा में जमा है। तो हरेक का बाबा ने अपना अपना पार्ट दिया है, हरेक को अपना अपना रोल दिया है, हमें वो विजन को ढूंढना है कि बाबा ने व्यक्तिगत रूप से मुझे क्यों ढूंढा और बाबा मेरे से क्या कार्य कराना चाहते हैं। हम लोग इस बात पर चिंतन इतना नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल अनुभव है। अगर इस अनुभव को लेकर के हम चलेंगे, हम अनुभवों की लेन देन शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ। जब मैं यज्ञ में आई, सेंटर्स तो कम थे, ऑफकोर्स मैं अहमदाबाद में जब आई तो 3 या 4 सेंटर्स थे, मैं बात कर रही हूँ 1980 की, 80 के साल में। उस समय मैं एक ही ब्रह्मा कुमारी थी जो अंग्रेजी से पढ़कर आई थी, तो इंग्लिश में भाषण करना, इंग्लिश में कोर्स कराना, मैं एक वो पार्ट वाली थी। 2 साल के बाद एक नई जगह सेंटर खुल रहा था। अब वो था एक बहुत छोटा गांव, 7,000 की बस्ती का गांव था, लेकिन सीनियरिटी में मेरा नंबर आ रहा था, तो मुझे कहा है सेंटर खुल रहा है आपको जाके संभालना है। वो स्थान ऐसा था जो डायरेक्ट क्या कहे संदेश के द्वारा बाबा ने वो स्थान दिखाया था और वहां सेवा केंद्र खुल रहा था, तो मुझे कहा आप जाओ वहां। अब ठेठ गांव था, मेरी ABCD भी कोई समझता नहीं था, और मेरी भाषा में वो ठेठ गुजराती भाषा तो मुझे आती ही नहीं थी, पढ़ी नहीं थी मैं, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। तो जो क्लास के भाई बहने थे जिस बड़े सेंटर से मैं वहां जा रही थी, तो वो सेंटर के भाई बहनों ने मुझे मिल मिल करके आके कहा, बहन जी थी तो बहुत छोटी उम्र में मैं, आप बड़ी बहन जी को मना कर दो ना, और उनको बोलो कि मुझे मेरे लायक कोई जगह दो, ये जगह मेरे काम की नहीं है। मैं विजन सुना रही हूँ कैसे भगवान हमसे जो कराना चाहता है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसकी विजन से हमें अपने विजन को मिलाना पड़ेगा। तो जब बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, हम छोटे होते हैं ज्यादा, अपनी अकल तो लंबी होती नहीं है, तो फिर भी मैं डायरेक्ट बड़ी दीदी के पास जाने के बजाय बाबा के कमरे में बाबा के पास गई और मैंने बाबा को कहा, बाबा सब कह रहे हैं कि ये स्थान मेरे काम का नहीं है, मेरे लायक नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब ये बाबा के साथ की रूढ़िहानती कन्वर्सेशन था, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुमने जीवन किसको दिया है। अब हमारे लिए हमारे बड़े हमेशा आदर्श होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो बाबा है। तो मैंने बाबा को हंस के कहा, बाबा आपको जीवन दिए। तो बाबा ने कहा, जब जीवन बाबा को दी है तो उसको कैसे बेस्ट यूज करना, ये बाबा का काम है या आपका काम है। जब आपने दे दिया तो आपका काम तो पूरा हो गया। अब आपने जब इतना दिल से बाबा को अपना जीवन दिया है तो उसका बेस्ट यूज करना ये बाबा का काम है। बच्चे तुम निश्चिंत हो जाओ और निर्संकल्प हो जाओ। एक सेकंड में मैं निर्संकल्प हो गई, मैं वो स्थान पर गई। लगभग 2.5-3 साल हुए होंगे, कोई सेवा का प्रोग्राम था और सेवा के लिए मुझे मेरे बड़ों ने यहाँ भेजा। पहले तो यहाँ कॉन्फ्रेंसेस चलती थी ना, तो हमेशा कॉन्फ्रेंस में हमारी सेवा होती थी, सब जोन की सेवा। शिविर जो सुबह चलती है, वो शिविर की तैयारी करना, ये हमारी ड्यूटी होती थी। तो सुबह शिविर पूरा हो जाने के बाद दिन में कॉन्फ्रेंसेस चलती थी, तो हम फ्री हो जाते थे। 83 से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तो मैं कॉन्फ्रेंस का काम मेरा पूरा करके बाहर आंगन में बैठी थी। रतनमयी दादी ने मुझे बुलाया, कहा ये इतना इतना रिपोर्ट वगैरह तैयार करना है, लेकिन कल सुबह 8 बजे से पहले चाहिए। काफी सारा काम था, शायद बहुत सारे 67 या इतनी मेटाडोर की रिलीज हुई थी और उसका रिपोर्ट तैयार करना था। तो मैंने मेरे जैसे 3-4 लोगों को इकट्ठा किया, काम बांट दिया और सुबह 6 बजे मैं रिपोर्ट लेके दादी के पास पहुंची। दादी ने मेरी सीनियर है चंद्रिका बहन, उनको बुलाया, वो यूथ विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनको बुलाया और उसको कहा कि चंद्रिका, ये यूथ विंग का जो ऑफिस का कारोबार है ना, अभी जो बहन कर रही है वो थोड़ी उम्र में छोटी है, आप ना अभी ये कारोबार इसको सौंप दो। तो एकदम से कहा, छोटे से गांव में कौन पहचानेगा, लेकिन मैंने केवल बड़ों को यस किया और भगवान को यूज करना था, तो इतना बड़ा यूथ विंग का सारा नेशनल लेवल का कारोबार पीछे संभालने की जिम्मेवारी मुझे उस दिन से मिल गई। अगर मैंने अपने लिए विजन बनाया होता तो मैं इतना बड़ा विजन कभी बना नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी मैं इतना बड़ा एक छोटे गांव में बैठ करके। लेकिन वही चीज बाबा को करानी थी और बाबा को सौंप दिया, तो बाबा ने जो कराया वो सोच से बाहर की चीज, और इतना श्रेष्ठ कराया, इतनी चांसेस आज मिल रही हैं। कहने को कहा अचानक आ जाओ, लेकिन मेरे लिए तो मेरी ये 3 दिन की पांडव भवन की मधुबन भूमि की तपस्या हो गई ना। तो ये बीच बीच में चांसेस मिलना, ये भी तो अपना भाग्य है। तो अगर हम बाबा का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और बाबा को सौंपते, बाबा ये तन तेरा है, ये मन तेरा है, जो कुछ भी मेरे पास शक्तियां हैं धन के रूप में, साधन के रूप में, जो भी शक्तियां हैं, इसे बाबा आप जैसे भी यूज करना चाहो कर सकते हो। जैसे कोई साधन होता है ना, हारमोनियम या सितार या ऐसा कोई भी, उसको अगर कोई बजाता है सा रे ग म और आवाज निकलता है पा द नी सा, तो बजाने वाले को मजा आएगा नहीं मजा आएगा? अगर वो सारे ग बजाता है और आवाज भी वही निकलता है, तो बजाने वाले को सुरताल मिलाने में मजा आता है। ऐसे बाबा को भी हमें यूज करने में इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम बीच में इंटरफियर नहीं करें। बाबा इस तन के द्वारा या हमें मिली हुई शक्तियों के द्वारा जो कार्य कराना चाहता है, अगर वो कार्य कराने के लिए हम बाबा के आगे समर्पित भाव से स्वाहा हो जाते, बाबा आप जो कराना चाहो जैसे कराना चाहो, और फिर धीरे धीरे वो विजन को कैच करना शुरू करो कि बाबा ने मुझे क्यों सिलेक्ट किया है, जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहां जिस प्रकार की सेवाएं हैं, मुझे इसमें बाबा ने कौन सी कला दी है और किस लिए चुना। और आप सबका भी अनुभव होगा कि एक बार अपने श्रेष्ठ संकल्प से किसी भी सेवा के लिए हाँ कर दो, मानो आपकी बहन जी आपको कोई भी सेवा देती है, आपको नहीं भी आती है, एक बार हमने दिल से हाँ किया, किसी से एक बार पूछ लिया, किसी से सीख लिया, अनुभव ये कहता है कि जितना करते जाएंगे कभी संकल्प में भी ये विचार नहीं आवे कि बस मैं ही दिखता हूँ या मैं ही दिखती हूँ और कोई नहीं है क्या, कितना करें हम, कब तक खींचते चले जाएंगे? नहीं, हम जितना अपनी शक्तियों को सेवा में लगाएंगे उतना हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। हमारी जिस कला और जिस हुनर को हमने बाबा के यज्ञ में कार्य में लगाया, उसमें बाबा हजार गुना शक्ति भर देगा, हजार गुना विशेषता भर देगा और बाबा हमसे अच्छे से अच्छी तरह वो कार्य करेगा। चाहे वो भोग बनाने का है, टोली बनाने का है, सफाई का है, सेवा के और तरीके हैं जिसमें हमारे भाइयों का हाथ लगता है, पेंटिंग है, अक्षर बनाना है। हमने देखा है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने हाँ किया और हाथ लगाया और बाबा ने उनसे कार्य करवा लिया। तो हम यहाँ से एक विजन बना के जाए, अपने लिए एक दृश्य तैयार करें कि बाबा ने मुझे क्यों पसंद किया है। बैठो बाबा के पास, टाइम देखे और बाबा से पूछो कि बाबा आपने हजारों बच्चों को पसंद किया है, उसमें आपकी मेरे पर नजर क्यों पड़ी? आप मेरे से क्या कराना चाहते हैं? बाबा का विजन और हमारे संकल्प, हम इसको मिलाना सीख जाएंगे तो हम बाबा के बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन करके बहुत अच्छी तरह अपने संगम योगी छोटे से जीवन को सफल कर सकेंगे। और सेवा मिलना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई भी छोटे से छोटा कार्य मिला उसमें रचनात्मकता भर देना। आज देखो हमारे शंभू भाई है, पूरा टाइम हमारे साथ रहे हैं। अच्छा, जैसा टॉपिक होता है उस हिसाब से गीत बजता है। अब ये कला है, वो माहौल और वो वायुमंडल बनाने के लिए वैसा म्यूजिक हो, गीत के वैसे ही शब्द हो, वही भाव को वाइब्रेशन बनाना एक गीत संगीत के रूप से कला है। चाहे कुछ भी बजाना चाहे तो कुछ भी बजा सकते, सारे बाबा के गीत है, लेकिन समय अनुसार जो एक्यूरेट चीज बजती है तो वो माहौल को भर देती है, पावरफुल बना देती है। तो ऐसी रचनात्मकता जो भी सेवा मिले, हाँ, ये एक वरदान बाबा के घर से आज आप सब लेकर के जाना। नवीनता भी करें, बाबा का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी हम बने और छोटी से छोटी सेवा मिले उसको रचनात्मक तरीके से, उसमें नवीनता भर के, उसमें अपनी पूरी भावना भर करके अच्छे से अच्छी तरह उस कार्य को सफल करें, तो बाबा आप सबसे अभी और भी बहुत कुछ कराना चाहते हैं। बाकी तो आप सबका भी प्रतिभाव हम सुनना चाहेंगे कि 2.5-3 दिन आप सबने भी यहाँ बिताए हैं। आप सब तो 11 सुबह ही आ गए थे तो 3 दिन तो वैसे ही पूरे हो चुके हैं आपके, तो ये 3-3.5 दिन का जो भी आपका समय रहा इसमें क्या अनुभूति यहाँ से आप लेकर के जा रहे हैं, क्या संकल्प यहाँ से लेकर के जा रहे हैं वो हम सुनना पसंद करेंगे। कौन शुरू करेंगे? एक भाई आवे, आइए, एक बहन आवे, एक भाई आवे, एक बहन आवे, तैयार रहना।
ओम शांति। मैं आज तक जीवन में सबसे पहले 72 घंटे तक मौन अभी खोला मैंने, जब से मैं आया हूं माउंट आबू की। ठीक 12 बजे 72 घंटे हो चुके थे और मैंने, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मेरे 2 बच्चे यानी 2 मोबाइल परमानेंट स्विच ऑफ कर दिए थे मैंने यहां आकर, और बीच में खोलता हूं तो मैसेज इतने भयानक मिलते हैं कि मेरी थोड़ी सी सेवा दूसरे प्रकार की है। तो मैंने किसी से भी, चाहे घर का हो या मेरा सहयोगी हो, किसी से अभी तक बात नहीं की थी, तो मैं सबसे पहले तो आपके सामने ही मौन खोला है। और दूसरा एक्सपीरियंस रहा है कि पहली बार 20 साल के बाद 20 साल पहले 18 जनवरी 1996 को हम ओम शांति भवन में बाबा से मिले थे और उसके बाद 21वें वर्ष में यानी 1 अक्टूबर 1994 को हमारे को मेरे को अनीता कहाँ है वो भी खड़ी हो जाए, कभी सोचो कि मेरी बड़ाई कर रहा है, आ जाओ आप भी आगे आ जाओ। हम दोनों ने 1 अक्टूबर 1994 को लेह लद्दाख में ज्ञान प्राप्त किया था और ठीक उसके 1.5-2 साल में धारणा के बाद ही बाबा से मिलने आए थे और पांडव भवन के अंदर ठीक 21 साल बाद हमारे को मौका मिला है। जैसे बहन जी ने बताया कि 3 साल से पेंडिंग कार्यक्रम था और कल 13 तारीख को मेरे जींद के सफीदों के अंदर मेरी इतनी जरूरत थी कि राजीव गांधी पंचायती राज का जिला सम्मेलन था, पर मैं पॉलिटिक्स में हूं, लौकिक में पहले भारतीय वायुसेना में था, तो मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष को मैसेज भेज दिया आते ही मैं 3 दिन के लिए माउंट आबू जा रहा हूं और मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने गुड लक, क्योंकि वो भी बाबा के घर में आके गए हुए। तो एक्सपीरियंस सुबह से इतना अमृत वेले से लेकर जैसे पुनः हमारा बाबा मिलन हुआ है, इतनी अनुभूति इस योग भट्टी के अंदर बाबा मिलन के कार्यक्रम में भी हमने नहीं प्राप्त की। ठीक जो 18 जनवरी 1996 को प्राप्त की थी वो अभी 3 दिन के अंदर अनुभूति पुनः लौटी है। मेरे अंदर एक कमी आ गई थी राजनीतिक जीवन व्यवस्था के कारण, सिर्फ एक बहन ने ही उसको मेरे को पूरा कायम रखा, बिंदु दीदी सिरसा ने, जो हर टाइम में रात को भी 12 बजे भोजन के लिए बोलता तो भोजन तैयार रहता और कमरा तैयार रहता, पर अन्य बहनों की कुछ सिचुएशन होती है नहीं कर पाई तो मैंने बाहर का खाना शुरू कर दिया था। तो मैंने आज यहां पांडव भवन के इस प्रांगण में संकल्प लेके जा रहा हूं, चाहे मेरे को भूखा रहना पड़े मैं बाहर का भोजन अब नहीं करूंगा।
नहीं बाबा आपको भूखा कभी नहीं रखेंगे।
नहीं चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए दीदी, क्योंकि हमारी ऐसा है कि हमारे घर के अंदर मेरे को इस प्रोग्राम में आने की बिल्कुल भी, क्योंकि कहते हैं ना जब दूसरी सेवा में लग जाता है व्यक्ति, वैसे तो किसी का कपड़े का बिजनेस है, कोई पत्रकार है, कोई किसी भी प्रकार का हर का धंधा है, मेरा 24 घंटे का धंधा पॉलिटिक्स है दीदी। तो मैं स्टेट का सेक्रेटरी भी हूं हरियाणा का, वो तो एक लौकिक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे पहले तो बाबा का बच्चा हूं। और न मैंने कभी सेवा की कभी किसी प्रकार से ये किया कि जो करवाता है बाबा, अनेक वीवीआईपी की सेवा भी हुई है माध्यम से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी हमारे निमंत्रण के बाद यहां आए थे और उसके बाद कई नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे साथ रहता तो उनको मैं 5 साल तक लगातार कहता रहा चलो, पिछले बार यहां दादी और क्या नाम है विलेज रूरल डेवलपमेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर आए और माउंट आबू घूम के गए। और अभी जैसे कि मेरे को शशिकांत भाई ने बताया, उषा दीदी ने, कि 25 तारीख को, वैसे तो पता नहीं है, 25 तारीख को राहुल गांधी जी, अंबिका सोनी जी और मनीष तिवारी जी भी यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखो ये दादी जी के स्मृति दिवस पे उसका शेड्यूल यदि टेंटेटिव में रखा है, यदि कुछ काम हो गया तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि आगे की प्रेडिक्शन करना वो नहीं है, पर मैंने बाकी धारणाएं कभी नहीं छोड़ी पॉलिटिक्स में रहते किसी से, सच्चाई तौर पर राजनीति करता हूं और सच्चे तौर पर अपने केंद्र में भी चलता हूं और न मेरा कभी किसी से आंतरिक रूप से जो कह देता हूं तो मुंह पे कह के चला जाता हूं, अगला बुरा माने या भला माने उसका मेरे को मालूम नहीं रहता। पर अभी बाबा ने कहा बच्चे आप और मैच्योर्ड बनो, मैच्योरिटी जरूरी है, क्योंकि कल सूरज भाई ने मेरे को एक बात बताई कि सम्राट अशोक ने कहा था सत्यमेव जयते, पर इस कलयुग के अंदर असत्यमेव जयते। मैं सत्य के ऊपर इतना अडिग रह के कईयों से मैंने मेरे संबंध भी खराब कर लिए। सच में मैं जब भी मतलब कि यहां यहां नहीं, अन्य प्रदेशों में प्रभारी बन के भी जाता हूं, पंजाब में भी गया हूं, उत्तर प्रदेश में भी गया हूं, क्योंकि जैसे दीदी ने बताया ना कि छोटे गांव में मिली थी तपस्या वो आपने, हमारे को भी दीदी बाबा ने लेह लद्दाख से वहां से ही गीता पाठशाला की शुरुआत कराई थी हमारे से, और उसके बाद सरसावा आए सहारनपुर तो वहां भी हमने ताला लगा था, मकान तैयार था तो उसकी चाबी भी बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया था। उसके बाद हम भूटान बॉर्डर पे गए हंसी मारा जंगलों में, वहां हाथी आते थे, हमारा रियली बताते हैं कि मन उतर गया था कि छोड़ो अभी बाबा का ज्ञान से छुटकारा पा लेते हैं, ना यहाँ मुरली है ना और कुछ और है पता नहीं। फिर पोस्ट से मुरली आती थी, ठीक थोड़े से दिन बाद 45 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर मिल गया। फिर हमने दो गीता पाठशाला वहां भी खोली, एयरफोर्स के अंदर गीता पाठशाला चलाई क्योंकि डर तो रहता है, वहां पे चला नहीं सकते थे। फिर मनोरमा दीदी की पालना अलाहाबाद में मिली, उन्होंने हमारे में बहुत शक्ति भरी, करीब दो सेवाएं वहां भी, दो गीता पाठशाला हमने नहीं मतलब कि सभी ने सहयोग से मिलकर वहां भी चली। उसके बाद नरवाना के अंदर हम सेंटर तो हमारा नहीं था, तो 22 वर्ष हो जाएंगे तो 21 साल पहले नरवाना के अंदर विजय भाई और विजय बहन जी की मदद से हमने कहा कि सेंटर लेके आ जाओ, चलाया उन्होंने, जो सहयोग होता चलो वो तो कोई नहीं उन्होंने, पर आज वो केंद्र भी इतना 3 मंजिला बन गया है। और मेरा विजन रहता है एक, कल भी वैसे मैं कहना नहीं चाहता, कल भी मेरा एक विजन था कि सेंटर छोटा पड़ जाएगा, नरवाना का बाईपास निकल रहा है तो उस बाईपास के ऊपर कुछ न कुछ बाबा करवाए, और इसमें कोई शक की बात नहीं, जो सोचते हैं वह होता है। और बाबा ने हमारे को सच पूछे लौकिक में भी और अलौकिक में भी दोनों पालना इतनी दी है कि उस बाप दादा का हम लाख लाख शुक्रिया कहते हैं। कहीं भी सोचा और हुआ, एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं छोटा सा। एक बार मैं मेवात के अंदर जा रहा था तो मेरी गाड़ी टकरा गई, गाड़ी आगे से डैमेज हो गई, कुछ नहीं लगा हमारे को तो मन बड़ा खट्टा हुआ, गाड़ी वहां पेट्रोल पंप पे खड़ा करके फिर भी चल दिए। फिर हम रात को घर वालों को हमने बताया कि झूठ बोला हमने कि कुत्ता लग गया था तो हम गाड़ी का बम्पर टूट गया, बट गाड़ी काफी डैमेज हो गई थी। तो रात को हमने हिसार आके उसको जमा करवाया, सवेरे आए तो होता ही है जब घर से जाए तो दूसरी गाड़ी ना मिले तो होता ही, अपनी गाड़ी निकाल के दूसरे वाली चल दिए तो घर वाले बोले क्या हुआ, वहां आ जाएगी 3 दिन में, बम्पर टूट गया, बट बहुत भयानक टक्कर थी कि हम बच गए। तो बाबा ने कहा मेरे को, मैंने घरवालों को तो नहीं बताया कि बच्चे आपकी जान है ना वो छोटी गाड़ी में नहीं बड़ी गाड़ी में, बड़ी आप इतना टूर करते हो, 500-500 किलोमीटर यात्रा करते हैं दिन में, हम 700 किलोमीटर पैदल भी चले हैं सद्भावना यात्रा में, लौकिक में, इसमें दूसरी में पार्टी वाली में। तो बोला कि आप बड़ी गाड़ी ले लो। मैंने कहा बाबा ये मकान भी बन रहा है ये भी बन रहा है, गाड़ी कैसे आई। मैं एक की डेथ पे गया हुआ था तो वहां एक भाई ने ताजी गाड़ी निकलवाई थी बिल्कुल ब्रांड न्यू, और उसने निकलवा तो ली पर उससे किस्त भरने का वो नहीं था, जुगाड़ नहीं था। तो मेरे को बोला भाई फलाना व्यक्ति गाड़ी बेच रहा है और आप ये गाड़ी मिल सकती है। मैं वहां पे गया और तुरंत बगैर किसी के मैंने सौदा किया और मेरी जो गाड़ी थी उसने वो छोटी गाड़ी रख ली और मेरे को बाबा ने तुरंत ही बड़ी गाड़ी दे दी। कई बार लोग सोचते हैं कि राजनीति के अंदर लोग पैसा कमाते हैं, पैसा नहीं है वहां भी, बड़े बीके से भी सभ्य लोग हैं ऐसा नहीं है, और वहां सीखने का बहुत मौका मिलता है। पर सेवा मैं नहीं चाहता कि कोई उसके अंदर आए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बजे इसके अंदर कैपेसिटी हो या सामना करने की शक्ति हो, मैं भी नहीं चाहता कि कोई उसके अंदर आए, वहां बड़ा ऐसा है सिस्टम तो सारा चलता है सभी चीजें होती है, सभी वहां पर धार्मिक संस्था वाले भी जाते हैं और भी जाते हैं, सिस्टम बड़ा ठीक है, पर हम अपने को एक सभ्य ये सारी शक्तियां दी है जो वो उस तपस्या ने दी है, जो हमारे को 27 साल की उम्र होगी हमारी और अनीता जी की 24 की थी, तब हम ज्ञान में चले थे, उस तपस्या के कारण आज हम ये गेन कर रहे हैं। मैं पुनः इस भट्टी के अंदर जो आज मेरे को अनुभव हुआ है, मेरे को फरिश्तापन की स्थिति नजर आती है, मैं मौन करके जब अकेला चलता हूं तो बाबा को साथ लेके ऋषि भवन से लेकर यहां चारों धाम ओम शांति भवन, और मैं कह रहा हूं कि और एक छोटा सा शर्मा जी होंगे शायद, नहीं है पता नहीं, मेरे साथ जींद के शर्मा जी को डाल दिया, वो उनका आवाज सुनो ना तो भोंपू से भी तेज है। मैंने सोचा कि इसके साथ मौन व्रत कैसे रहेगा, तो वो सवेरे ही उठते ही कहता है राजेश भाई ओम शांति पूरे जोर से। मैंने कहा शर्मा जी ये तो मुश्किल है इसके, दे दे एक मिनट, कि इसके साथ यदि मैं वो भी रह गया ना मौन में तो समझ लो मैंने अपने योगी जीवन की नैया पूर्ण रूप से पार कर ली। तो वास्तव में शर्मा जी ने आज मेरे को तीन दिन, वो एक दिन तो उसने मेरी वेट की, जैसे 11 को शुरू किया था ना तो दोपहर बाद, उस दिन सोचा कल बोलेगा ये कल बोलेगा ये, तो आज उन्होंने मेरे को कहा कि आप पास और मैं फेल तो ठीक ऐसा है कि हम योग युक्त स्थिति में रहते हुए देही अभिमानी बनकर यदि हर कार्य करें तो हम जीवन में हर जगह सफल होते हैं, और मेरे को आगे का पता भी लग जाता है, मेरे विरोधी जब आके खड़े होते हैं ना दीदी, मेरे को पता लग जाता है बाबा दे देता तेरे साथ घटना घटने वाली है, और मैं पूरा अलर्ट हो जाता हूं और हर टाइम मात देता हूं। एक दिन की बात है, बिल्कुल मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक ऐसी घटना सुनाऊंगा दीदी लाइफ की,
एक बजे बिल्कुल फिट पूरा करके निकलना
नेता हूं ना बोलता थोड़ा ज्यादा हूं। मेरे ऊपर एक मेरी पार्टी के मंत्री ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया SC ST का, और उसमें गैर जमानती वारंट होते हैं झूठा, और मेरे को यह तसल्ली नहीं कि वह मेरे खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ है, एक्सेप्टेशन नहीं है मेरे को, पूरा कोई भय नहीं मेरे अंदर। और मेरे पेरेंट्स गए हुए थे अमेरिका ब्रदर के पास, वो वहां से फोन करके पूछते हैं भाई तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, तेरे को गिरफ्तार ना कर ले बताओ। मेरे फादर इन लॉ का भी फोन आ गया, बोला पेपर में आ गया, टीवी पे आ गया, सारी जगह हो गया। मैं SP साहब के पास चला गया सीधा ऐसे ही, अपने काम से नहीं, किसी का रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए। SP बोला तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मैं बोला कर लो गिरफ्तार। SP कहता है यार तेरे को क्या गिरफ्तार करें, मुकदमा तो झूठा है, पर मंत्री ने आया कि उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो। मैंने सोचा जब SP बोल रहा तो मैं CM के पास चला गया सीधा, चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर के पास गया, जैसे बाबा ने इतना बिजी होते चीफ मिनिस्टर ने कहा अंदर आ जा। मैं अंदर गया, चीफ मिनिस्टर ने फोन किया SP को तुरंत ही, बोला भाई ये मुकदमा झूठा है और राजेश का मुकदमा डिसमिस कर लो। तुरंत बाद में दिल्ली से लौट रहा था, चीफ ने SP का फोन आया, भाई कल राजीनामा लिख के दे देना उस बंदे से, और कोई बात नहीं उसको थोड़ा सा पटा भी लेना, उसको थोड़ा हाओ भी ना हो, वो भी बेचारा पजल है। तो तुरंत बाबा ने मेरा विघ्न मुक्त कर दिया, और ये है बाबा के असली बच्चों के साथ, सत्या बच्चों के साथ, सत्यता से साथ खड़ा रहकर। और मेरे को ज्यादा टाइम लिया दीदी, इसके लिए मैं वेरी वेरी सॉरी, थैंक्स टू यू, ओम शांति।
थैंक यू। और बहनों में से कौन उठेगा? भाई भट्टी का दो दो मिनट में अनुभव सुनाना, हमें ठीक एक बजे पूरा करना है। माताओं में से कोई उठे? बांदे। अच्छा, और भाइयों में से कोई सुनाएंगे तो तैयार रहे, आगे आ जाए।
ओम शांति। कल दीदी ने जो सम्मान दिया था बहुत अच्छा था, स्वयं भगवान मेरा साथी है तो क्या कर सकता को आंधी और तूफान। ओम शांति।
ओम शांति। सूरज भाई जी ने जो क्लास कराई कल बहुत अच्छी लगी। पहले हम योग करते थे तो कई बार अनुभव होता ही नहीं था, तो कल जैसे उन्होंने कराया हमने काफी प्रयास किया। वो फरिश्ता ब्राह्मण जीवन में अपनी आत्मा को अनुभव करना, फिर फरिश्ता स्वरूप में, फिर देवता स्वरूप में, काफी उससे अच्छा लगा। और आगे भी जीवन में ये प्रयोग करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा बनाया था, जैसे उषा बहन जी का, सूरज भाई जी का, गीता जी का, इतना अच्छा जैसे अनुभव रहा कि कभी कल्पना नहीं कर सकते कि 9 साल हालांकि हो गए चलते, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे आज पहली बार अटेंड किया है। सूरज भाई ने इतने अच्छे से, इतने सूक्ष्म, 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। और यहां पर भी जैसे पहली बार, क्योंकि पांडव भवन में घूमने के लिए ही आते थे, फटाफट भाग जाते थे, लेकिन पहली बार यहां पर रहने का अवसर मिला और पीस टावर पे ऐसा, मतलब कि 1 घंटे का योग लगा, बाबा ने ऐसे वरदान दिए कि भाई तुम जो है आगे बढ़ो, तो मतलब कि अलग ही अनुभूति यहां की हुई। इसके लिए हम जींद वालों को भी, दीदी को भी, सभी को, पांडव प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आगे भी हमें ऐसा समय मिले हम ऐसी कल्पना करते हैं। ओम शांति।
मीनाबेन आप थोड़ा आगे आ जाएं।
ओम शांति। जैसे पांडव भवन हम देखने के लिए आते थे तो मन में बार बार ये संकल्प होता था कि हम भी साकार बाबा को देखते, उनसे पालना लेते, तो ऐसे बार बार होता ही था। लेकिन अब जब ये भट्टी के लिए नाम लिखे गए तो मैं यहाँ थी भी नहीं। मेरे को 10-15 दिन बाद में जब बहने पूछती थी कि आप भट्टी में जाओगे, मैं कहा मेरे को तो पता नहीं। मैंने दीदी से पूछा तो दीदी बोली आपका नाम तो मैंने लिखा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आ भी नहीं सकती थी, फिर भी मैंने नाम नहीं कटवाया अपना। और यहाँ इतना अच्छा अनुभव लग रहा है कि जैसे मैं सोचती थी कि साकार बाबा से पालना लेते, जहाँ भी जाओ मुझे हर समय ऐसे ही लगता है कि बाबा मेरे साथ है। खाना खाते वक्त भी ऐसे ही लगता है जैसे बाबा अपने हाथों से खिला रहे हैं। हम सोचते थे जैसा मैं सोचती थी, मुझे हर टाइम ऐसा ही महसूस होता था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक और संकल्प आ रहा था कि जैसे जो ये बड़े बहन भाई बाबा से जिन्होंने पालना ली थी, कि ये बाबा के साथ के ही अनुभव हमें सुनाए, ज्ञान की या और क्लास हमें ना बताए। तो दीदी ने जैसे अब भाई आत्म प्रकाश भाई जी ने करवाई थी क्लास, तो दीदी जी ने कहा था ना अपने अनुभव और बाबा के साथ के, मम्मा के साथ के वो बताए, तो मेरा संकल्प चल रहा था और दीदी ने ऐसे ही कह दिया, भाई जी ने फिर तभी वैसे ही बताया जो सोचते हैं वैसा ही हो रहा है। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये सोचते हैं कि जीवन में ऐसा अवसर बार बार मिलता रहे। ओम शांति।
अब मैं मीना बहन को आमंत्रित करती हूँ, सबकी तरफ से मीना बहन थैंक्स करेंगी। ओम शांति। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है ना, मजा आ गया, इतना रिफ्रेशमेंट हमें मिला। हम सबको इसके लिए कितना धन्यवाद करें वैसे तो शब्द नहीं है। सबसे पहले धन्यवाद तो हम प्यारे बाप दादा का करते हैं जो इतनी अच्छी शिक्षाएं बच्चों के द्वारा हम सबको देते रहते हैं। इसके अलावा हमारे तृप्ति एक आप सामने बैठे हैं दीदी, आपका कर देते हैं पहले, बाबा का हो गया, बाबा में सारे समा गए, फिर आपका धन्यवाद। और फिर जो हमारे लाइट साउंड वाले भाई, कितना अच्छा सिस्टम से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खाने का तो आप सबको बहुत मजा आ गया होगा है ना, कितना खाना खाने की कितनी सुंदर व्यवस्था, हम सबके लिए रहने की कितनी सुंदर व्यवस्था। हम जब भी भाई को जाकर कहें भाई जी को ये कमरा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं बहन जी ये कर लो, इतना सुंदर सहयोग, उसका हम कितना धन्यवाद करें। इसलिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।